हॉल में सुबह की हल्की धूप फैल रही थी। बड़ा सा झूमर ऊपर से चमक रहा था। टेबल पर गर्मागर्म नाश्ता सजा था और चारों अविनाश, सुप्रिया, सुजीत और नंदिनी आराम से बैठे बातें कर रहे थे। हंसी मजाक चल रहा था जैसे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन इस शांति के पीछे भी हर किसी के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था। अविनाश की नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं, जैसे उसे किसी का इंतज़ार हो। तभी बाहर से गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। स्कॉर्पियो, सुजीत ने खिड़की से झांकते हुए कहा। अगले ही पल ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसमें से उतरा विश्वनाथ। ब्लैक शर्ट, सफ़ेद पैंट, आंखों में वही ठंडी खतरनाक चमक। उसका हर कदम ज़मीन पर नहीं, सीधे लोगों के दिलों पर पड़ रहा था। चारों के चेहरे एकदम बदल गए। हंसी गायब, आराम खत्म। हॉल का माहौल एकदम भारी हो गया। विश्वनाथ बिना किसी को देखे सीधे अंदर आया। उसके पीछे एक वकील फाइल लेकर चल रहा था और दो बॉडीगार्ड। विश्वनाथ ने एक नज़र चारों पर डाली, फिर जाकर हॉल की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ गया। वही कुर्सी जहां कभी सुषमा बेबी बैठती थी, आज वो जगह उसने ले ली थी। नाश्ता अच्छा चल रहा है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में मजाक नहीं था। खामोशी, कोई जवाब नहीं। वकील आगे बढ़ा, उसने फाइल टेबल पर रखी। ये क्या है, सुप्रिया ने डरते हुए पूछा। वकील ने सीधे कहा, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट्स। चारों एक दूसरे को देखने लगे। मतलब, नंदिनी की आवाज़ कांप गई। वकील ने फाइल खोली। जो भी प्रॉपर्टी आपके चारों के नाम पर है, वो सब आप अपनी माँ सुषमा देवी के नाम वापस कर रहे हैं। एक पल के लिए समय जैसे रुक गया। क्या? सुजीत खड़ा हो गया। ये मजाक है क्या? विश्वनाथ ने उसकी तरफ देखा, धीरे से कुर्सी पर पीछे टिकते हुए। बैठ जाओ, उसने ठंडी आवाज में कहा। सुजीत वहीं रुक गया, लेकिन बैठा नहीं। ऐसे कैसे? उसने गुस्से में कहा। ये हमारी प्रॉपर्टी है, हम क्यों? क्योंकि मैंने कहा है। विश्वनाथ की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसा वजन था कि सुजीत के बाकी शब्द वहीं मर गए। हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया। अविनाश चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी आंखें सब देख रही थीं, हर मूव, हर एक्सप्रेशन। विश्वनाथ ने आगे झुककर टेबल पर उंगलियां थपथपाईं। सुजीत, उसने शांत लहजे में कहा, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, एक ऑर्डर है। सुजीत के चेहरे पर गुस्सा साफ था। और अगर हम ना माने तो? विश्वनाथ हल्का सा मुस्कुराया, वो मुस्कान खतरनाक थी। तो फिर, उसने धीरे से कहा, तुम लोगों का हाल क्या करूंगा, ये मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। उसकी आंखें सीधे सुजीत की आंखों में थीं। दो सेकंड, तीन सेकंड, और सुजीत की नजरें झुक गईं। नंदिनी ने डरते हुए फाइल उठाई, उसके हाथ कांप रहे थे। साइन कर दो, वकील ने पेन आगे बढ़ाया। नहीं, सुप्रिया ने धीरे से कहा, ये गलत है। विश्वनाथ ने उसकी तरफ देखा। गलत? वो हल्का सा हंसा। गलत तो वो था जब तुम लोगों ने मौसी जी को इस हालत में छोड़ा था। उसकी आवाज अब भारी हो गई थी। आज बस चीजें सही हो रही हैं। अविनाश ने पहली बार बोलना सही समझा। विश्वनाथ, उसने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, बात करके कुछ हल? तुमसे मैंने राय नहीं मांगी, विश्वनाथ ने उसे बीच में ही काट दिया। दोनों की आंखें मिली और उसे एक नज़र में सालों की टक्कर साफ दिख रही थी। अविनाश के होंठ हल्के से भींच गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो समझ गया था अभी वक्त उसका नहीं है। एक एक करके नंदिनी, फिर सुप्रिया, फिर सुजीत, तीनों ने साइन कर दिए। हर साइन के साथ जैसे उनके हाथ से सब कुछ फिसलता जा रहा था। अब फाइल अविनाश के सामने थी, पूरा हॉल उसकी तरफ देख रहा था। अविनाश ने फाइल को देखा, फिर विश्वनाथ की तरफ। तुम्हें लगता है? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा? विश्वनाथ ने सिर टेढ़ा किया। तुम हमेशा से हारने के बाद भी लड़ने की कोशिश करते हो और हर बार हारते हो। ये शब्द सीधे दिल में लगे, लेकिन अविनाश के चेहरे पर मुस्कान बनी रही। हर बार, उसने धीरे से कहा, एक जैसा नहीं होता। हॉल में टेंशन और बढ़ गया। कुछ सेकंड तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, फिर अविनाश ने पेन उठाया। सबकी सांसें थम गईं और उसने साइन कर दिया। वकील ने तुरंत फाइल बंद की। अब से, उसने औपचारिक लहजे में कहा, सारी प्रॉपर्टी सुषमा देवी के नाम है। विश्वनाथ खड़ा हुआ, उसने चारों को देखा एक एक करके और उसने ठंडी आवाज में कहा, जिस हवेली में तुम बैठे हो, उसने चारों तरफ नजर घुमाई, वो भी अब तुम्हारी नहीं रही। सुप्रिया की आंखों में आंसू आ गए। मतलब हमें जाना होगा? नंदिनी ने डरते हुए पूछा। विश्वनाथ ने सीधा जवाब दिया, आज ही। हॉल में जैसे बिजली गिर गई। ये गलत है, सुजीत फिर बोला, लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसा दम नहीं था। विश्वनाथ ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, वो मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया, वकील और बॉडीगार्ड उसके पीछे पीछे। लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर वो रुका, बिना मुड़े उसने कहा, एक बात याद रखना, ये तो बस शुरुआत है। और फिर वो चला गया। हॉल में सिर्फ सन्नाटा बचा था। चारों वहीं खड़े थे जैसे किसी ने उनके पैरों से जमीन खींच ली हो। अविनाश ने धीरे से गहरी सांस ली, लेकिन उसके बाद
वो बस अपने हाथ मलता रह गया। चेहरे पर वही मुस्कान थी, पर अंदर सब कुछ चल रहा था। ये खत नहीं हुआ, उसने खुद से बहुत धीरे कहा, इतना धीरे कि किसी और ने सुना भी नहीं। उधर विश्वनाथ की गाड़ी हवेली के गेट के अंदर आकर रुकी। दरवाजा खुला और वो उसी ठंडी चाल के साथ अंदर आया। हॉल में सुषमा देवी बैठी थी, उनके साथ रत्ना देवी और बाकी घर के लोग। सबकी नजरें सीधे उसी पर टिक गईं। विश्वनाथ बिना कुछ बोले आगे बढ़ा और फाइल उनके सामने रख दी। सब वापस हो गया, उसने शांत आवाज में कहा। सुषमा देवी के हाथ हल्के से कांप गए। उन्होंने फाइल खोली, नाम देखा, आंखों में चमक आई, लेकिन उसी के साथ एक दर्द भी। ये सब मेरा था, उन्होंने धीमे से कहा। और फिर भी आज ऐसा लग रहा है जैसे छीन कर लाया गया हो। विश्वनाथ कुछ नहीं बोला। रत्ना देवी तुरंत आ गईं, उनकी आवाज में सख्ती थी। दीदी, अब आपको एक बात समझनी होगी, उन्होंने सीधे कहा, अब आप कभी उनके पास मत जाना। हॉल में फिर से वही भारी खामोशी छा गई। सुषमा देवी ने धीरे से सिर उठाया, उनकी आंखों में इस बार सिर्फ एक सवाल था, क्या सच में रिश्ता इतना आसान होता है खत्म करना।